नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। किस्सा राजेश खन्ना का है और बात हो रही है 1970 के दशक की। साल 1970 खत्म होते होते इंडस्ट्री में राजेश खन्ना का कद और भी बढ़ गया था। एक के बाद एक हिट फिल्मों की बदौलत उन्होंने देश भर के सिनेमाघरों पर जैसे कब्जा ही कर लिया था। ज़्यादातर थिएटरों में उनकी ही अलग अलग फिल्में चल रही थीं, जिन्हें देखने के लिए उनके दीवाने फैंस लाइन लगाए थे। ये राजेश खन्ना के करियर का शानदार साल था। कटी पतंग, द ट्रेन, आन मिलो सजना में भी दर्शकों ने उन्हें हाथों हाथ लिया। उनकी ये फिल्में कमर्शियल तौर पर कामयाब तो थी ही, म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर भी थी। कटी पतंग के साथ तो राजेश खन्ना, किशोर कुमार और आर डी बर्मन की बेमिसाल तिकड़ी पूरी फॉर्म में आ गई। फिल्म कटी पतंग में भी कहानी आशा पारेख के इर्द गिर्द ही घूमती थी, लेकिन राजेश खन्ना का जादू इस महिला प्रधान फिल्म में भी सिर चढ़कर बोला। दर्शकों के ऊपर उनका सम्मोहन जैसे हर गुजरते दिन के साथ और बढ़ता जा रहा था। इसी दौर में उन्होंने निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की एक फिल्म साइन की जिसका नाम था आनंद। ऋषिकेश मुखर्जी ने उस जमाने के मशहूर एक्टर्स से आनंद के लीड रोल की बात की थी, लेकिन अंत में फैसला राजेश खन्ना के पक्ष में हुआ। अपने अनुशासन के लिए मशहूर ऋषिकेश मुखर्जी आनंद की शूटिंग को जल्द से जल्द पूरी करना चाहते थे, लेकिन राजेश खन्ना के पास तो स्क्रिप्ट पढ़ने तक का वक्त नहीं था। वो एक मशीन की तरह दिन रात काम में डूबे थे। ज़्यादा काम की वजह से वो बेचैन रहने लगे थे। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बाद के दिनों में बताया था कि ये बात कोई नहीं जानता, लेकिन आनंद की शूटिंग मेरे करियर के सबसे व्यस्त दौर में हुई थी। ज़्यादा काम के दबाव से मैं बुरी तरह परेशान हो रहा था। लोगों को ये बताते बताते मेरा गला ख़राब हो चुका था कि मैं नई फिल्में साइन नहीं कर सकता, मगर किसी को परवाह नहीं थी, किसी ने मेरी नहीं सुनी। अब मेरे पास किलो के हिसाब से फिल्में तो थीं, मगर डेट्स नहीं थीं। मुझ पर ज़्यादा काम लेने, अव्यवस्थित और लालची होने तक के आरोप लगे। मैं ऐसा नहीं था। मेरी परेशानी ये थी कि मुझे ना कहना नहीं आता था। जितने ज़्यादा फैंस के खत मुझे मिलते थे, मैं और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता था। ये अजीब बात है, लेकिन एक एक्टर का असली संघर्ष उसकी कामयाबी के बाद शुरू होता है, क्योंकि उससे अपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। शायद इसी दबाव को कम करने के लिए राजेश खन्ना ने हर शाम दोस्तों के साथ महफिल जमानी शुरू कर दी। शराब की चुस्कियों के साथ दोस्तों से दिल की बातें दिन भर की थकान के बाद उन्हें अजीब सा आराम देती थीं। जैसे जैसे रात घिरती, शराब बहती जाती, बातों और कहकहों की आवाज़ ऊंची होती जाती। ये माहौल राजेश खन्ना को उनके थिएटर के दिनों की याद दिलाता था, जब सिगरेट के धुएँ भरी शामों के बीच ऐसी महफिलों में नए आइडिया और कहानियों पर चर्चा होती थी। वो दोबारा वैसी ही महफिल जमाना चाहते थे, इसलिए फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हस्तियों को बुलाया जाता। शानदार खाना होता, शराब परोसी जाती। ये महफिलें उनकी आउटडोर शूटिंग के दौरान भी जारी रहती थी। वो बेहद उदार और बड़े दिलवाले मेज़बान के रूप में मशहूर थे। वरिष्ठ फिल्म पत्रकार भारती एस प्रधान बताती हैं कि उनके मेहमान होने का मतलब था कि आपको जो मिलेगा वो बेहतरीन होगा। वो कहती कि एक बार उनके होटल के सुइट में डिनर करते समय मैं बातों में व्यस्त थी और मैंने ध्यान नहीं दिया कि हर बार जब गर्म रोटी आती थी तो राजेश खन्ना खामोशी से मेरी प्लेट से ठंडी रोटी उठाकर अपनी प्लेट में रख लेते थे, ताकि गर्म रोटी मेरी प्लेट में रखी जा सके। सच कहूँ तो मैं और किसी सुपरस्टार या किसी छोटी मोटी हस्ती को भी नहीं जानती जो राजेश खन्ना जैसा अद्भुत मेज़बान हो। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।